Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillahi bi nimetihi tetimmü salihat. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah Teala hamen nimeton ke zeval se bachaye aur jo bhi nimet usne hame diye uska hak ada karne wala banaye. Aapka to nahi pata lekin mujhe apna maloom hai ki pichle pare mein वाइन ताउद नेमत अल्लाही ला तुखसुहा इस आयत को पढ़ने और पढ़ाने के बाद कल सारा दिन इस पे तवज्जो रही। और हकीकत यह है कि हम अगर अपनी उंगलियों पे जो कि दस्त हैं उन पे भी अगर हम अल्लाह ताला की नेमतें गिनने लगे तो गिन नहीं सकते। और ये उंगलियां तो बहुत कम हैं। एक एक सांस पे जो अल्लाह ताला आपको मुझे एक तोहफे के तौर पे देता है, अगर हम अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहें तो हक अदा नहीं कर सकते। किसी ने बहुत ही प्यारी बात कही कि अगर हर सांस पर एक दफ़ा शुक्र अदा करोगे तो तुम्हें तो अभी सांस के अंदर आने और फिर जाने का शुक्र अदा करना, यानी कर ही नहीं सकते। तो ज़िंदगी में शिकवों की जगह शुक्र लाना है, इसी शऊर और एहसास के साथ शुरू करेंगे आज का पारा। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बादु फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम रब्बी श्रहली सदरी व यस्सिरली अम्री वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। दौरे कुरान 2025 DQ 2025। आज इसमें हम करेंगे पारा नंबर 15 सुबहान अल्लाज़ी। क्या खूबसूरत टॉपिक है। हर चीज़ एक से दूसरी जुड़ी हुई होती है और जब हम कुरान पाक को समझने की कोशिश करते हैं ना तो अल्लाह ताला फिर हमारे दिल दिमाग को खोल देता है। तो घर से निकलने से लेके या फिर अपनी अपनी जगहों पे बैठने से पहले आप एक दफ़ा ये दुआ ज़रूर किया करें कि रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाह ताला हमारे सीनों को खोल दे। हकीकत यह है कि जब सीना खुलता है तो खैर के दरवाज़े खुल जाते हैं, नेकियों के दरवाज़े खुल जाते हैं। तो बड़ी मोहब्बत से प्यारे नबी के लिए दुरूद शरीफ पढ़ते हैं इस सोच के साथ कि आपने हमें इतना खूबसूरत दीन दिया कि जिसको पाने के बाद ना सिर्फ ये है कि हमारे बड़े बल्कि हमारे बच्चे, हमारे जवान, हमारी औरतें, हमारे मर्द, हमारे लड़के और हमारी लड़कियाँ अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं। इस नेमत को जहन में रखते हुए नेमत हिदायत, नेमत इस्लाम, आइए देखते हैं कि सिराज मुनीरा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिराज मुनीर कैसे थे। आप हिदायत के एक चिराग थे। आज के इस बारे में हम देखेंगे कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम दुनिया को दिया तो आपके इर्द गिर्द जमा होने वालों में से बड़ों की निस्बत जवान ज़्यादा थे। और उंगलियों पे गिने जाते हैं वो नाम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में बड़े थे, इसलिए कि जवानी की उम्र ही असल उम्र होती है। आज के हमारे पारे का थीम भी यूथ है। जवानी का ईमान क्या होता है और बुढ़ापे का ईमान क्या होता है। तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वला आली मुहम्मदिन कमा सल्लई ताला इब्राहीम वाला आली इब्राहीम इन्नका हमीदु मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वाला आली मुहम्मदिन कमा बारक ताला इब्राहीम वाला आली इब्राहीम इन्नका हमीदु मजीद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की कहानी मोहम्मद अरबी, जिसको पढ़ने और सुनने के बाद दिल चाहता है कि हम मज़ीद सुने, क्योंकि अल्लाह के नबी का तذکرہ और आपकी ज़िंदगी के अंदर एक हल्की सी झांकने वाली कैफियत है इस वक्त। हम कोई डिटेल्स में नहीं जा रहे, मैं तो सिर्फ़ फ़ील करती हूँ, यानी मोहम्मद अरबी का सेशन फ़ील करने का है। इससे कोई मसले अखज़ नहीं, इससे कोई अमल की बातें अभी तक नहीं हम ले पा रहे बहुत ज़्यादा, लेकिन ये हमारा ईमान है और होना चाहिए कि तारीख़ को अगर हिदायत मिली तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में भेजे जाने वाले उस दौर में कि जब हकीकत में चारों तरफ अंधेरे थे। पिछले सेशन में हमने देखा था क्या आप अपनी उम्र की 35 यानी 35 बहारें देख चुके थे? आप सच्चे थे, आप लोगों के प्यारे थे, आपकी सीरत बेदाग थी, पाकीज़ा तबीयत थी, हर एक आपकी इज्जत करता और जो कुछ आप फरमाते उसको मान लेता। और ये एक मजबूत पर्सनैलिटी की दलील होती है। अमूमन हम शिकवा करते हैं, हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते, हमारे घर वाले हमारी बात नहीं मानते। तो आइए देखते हैं कि मोहम्मद अरबी को अब अल्लाह की पुकार वही की सूरत में आने वाली है। उम्र मुबारक 40 साल के करीब होने वाली है। और जब आप दुनिया की नज़र से हर वो नेमत पा चुके जिसको पाने की ख्वाहिश और हसरत हर एक इंसान की होती है और होनी भी चाहिए, तो अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या मामला किया? आपको कुछ सूझने लगा। आप कह सकते हैं कि अंधेरे में चार जुगनू आपको हल्के फुल्के दिखने लगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दिल के अंदर एक ऐसी चीज़ महसूस करते थे कि वो अल्लाह का घर जिसको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बनाया तौहीद के लिए, आज वहाँ बुत हो गए। घर घर का बुत था। और कुरान की वायद के वही बवान अली इब्राहिम मकान अल बैत अल्ला तुशरिक भी शैया वताहिर बैत अल तौइफीन वल्काइमीन व रुक का सुजूद। वो वक्त भी याद करो जब हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए इस घर की तजवीज़ की, यानी इस घर को मुकर्रर किया, अपॉइंट किया या असाइन किया। हिदायत ये थी कि मेरे साथ किसी चीज़ को शरीक ना करना और मेरे घर को पाक रखना तवाफ़ करने वालों, क्याम करने वालों, रुकू और सजूद करने वालों के लिए। ये सूरत हज की आयत नंबर 26-26 है। तो गोया के अरब के वो लोग जो अब दीन इब्राहिमी को छोड़ चुके थे, सिर्फ नाम था, छिलका था, अंदर का गुदा ख़त्म था, इसके पैगाम को भूल चुके थे, मूर्तियों की पूजा करने लगे थे। लेकिन कुरैश के कुछ लोगों को इस गुमराही का एहसास था। ये भी याद रखिए, ज़रूर लिखिएगा। जितना भी अंधेरा हो जाएगा ना, ज़रूर रोशनी होगी, चाहे छोटे से जुगनू की रोशनी क्यों ना हो। खैर, उन्होंने शिर्क और बुत परस्ती के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। ये आज के दौर में ऐसे ही है कि जैसे किसी भी माशरे में आप देखते हैं जुल्म बहुत है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। सोन ऐसी कई किस्म की फलाही तंजीमें बन जाती हैं जो किसी भी माशरे से बुराइयों को ख़त्म करना चाहती हैं। जैसे पिछले पारे में हमने बेटियों के कत्ल की बात देखी थी ना, कि मुशरिक माशरा दख्तरकुश माशरा होता है। लेकिन उस दौर में भी कुछ लोग ऐसे थे जो इस बुरी रस्म पे आवाज़ उठाने के लिए निकलते थे और लोगों को कहते थे कि इन बेटियों को कत्ल ना करो बल्कि हमें दे दो। बिल्कुल ये ऐसे ही है जैसे झूला नाम की एक तंजीम कराची में भी बनाई गई थी। अब मुझे नहीं पता इस वक्त है नहीं, लेकिन आज से 15-20 साल पीछे मौजूद थी। तो बिल्कुल इसी तरह से कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिया हुआ सबक याद दिलाया। मक्का वालों से उन्होंने क्या कहा, सुनिएगा। कुरैश के लोगों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटों, अल्लाह का घर पाक करो। काबा में जो तुमने मूर्तियाँ रखी हैं इन्हें तोड़ फोड़ दो, वो तो बिल्कुल बेजान है, न सुन सकती हैं न देख सकती हैं, इनको पूजने से क्या फायदा होगा? तुम इनका तवाफ करते हो, इन पे चढ़ावे चढ़ाते हो, इनके नाम की कुर्बानियां करते हो। भाइयों देखो कि तौरात और इंजील में एक नबी का जिक्र आया है। यानी अब देखिए कि हवा चलने लगती है। जहां अल्लाह ने वही का पैगाम दिलाना होता है ना, वहां कुछ ना कुछ ऐसी बातें सूझने लग जाती हैं कि जिस तरह की यहाँ दिख रही है। और कहने लगे कि वो नबी तुम्हारे अपने ही अंदर से होगा, वो बस आने ही वाला है। यहूदी आलिम हो, ईसाई पादरी हो या काहिन हो, सब यही कहते हैं। लिहाजा तुम अपने आप से तौबा कर लो और अभी से इसका इंतज़ार करो। दुनिया में कामयाब होगे और आखिरत में तुम निहाल रहोगे। यानी इस सारी कोटेशन से क्या मकसूद है कि जब भी माशरे में अंधेरे होंगे, सिराज मुनीरा की ज़रूरत महसूस होगी। वो अपने अपने दौर के हालात के तकाज़ों के मुताबिक होगा। अब ये जो आवाज़ उठी थी ना, ये बिल्कुल नई आवाज़ थी। कुरैश के कान खड़े हो गए कि ये कौन लोग हैं? आपको तो कौन थे? जब देखा तो लिखिए उमर बिन नुफ़ैल। नाम के एक शख्स के बेटे जैद थे, नफल के बेटे वरका हैं, हारिस के बेटे उस्मान हैं और जहश के बेटे उबैद। ये थे वो चार जुगनू जिन के ऊपर आज का पूरा पारा चलेगा इंशाल्लाह। ये सब जवान थे, ये यंगस्टर्स थे, ये उस दौर की यूथ थी और ये अपनी कौम के बहुत ही कह लीजिए के चुने हुए लोग थे। लोग इनकी इज्जत करते थे, हर शख्स जानता था कि ये चार लोग दीन इब्राहिमी के पैरोकार हैं। ये जो मैंने जवान का लफ्ज़ बोला ना, ये इनकी उम्र को देखकर नहीं बोला, ये बुजुर्ग थे, काबिल कदर थे, लेकिन इनके हौसले जवान थे। पीछे एक पारा हमने किया था फितरत और वही के नाते से, आप कह लीजिए कि इनकी फितरत सलामत थी। और जिसकी भी फितरत सलामत होगी ना, उसको बुरी चीज़ बुरी लगेगी और अच्छी चीज़ अच्छी लगेगी, या अपने लिए भी क्राइटेरियन बना ले। इन्होंने शराब और जुए को अपने ऊपर हराम कर रखा था, बुत परस्ती से सख्त बेजार थे और बेचारी लड़कियों के लिए तो ये सरापा रहमत है। जी बिल्कुल ऐसे ही था, इनके कानों में जरा सी खबर पड़ती ना कि कहीं कोई शख्स अपनी मासूम बच्ची को जिंदा गाड़ने के लिए जा रहा है, महज मुफलसी और तंग दस्ती से डर कर या वैसे ही बायस से यार समझते हुए, तो ये फौरन जाकर उससे किसी तरह हासिल कर लेते और खुद उसकी परवरिश करते। और जवान होने पर बाप की तबीयत रागिब होती तो फिर उसको वापस भी कर देते। ये सब कुछ सही, लेकिन भला कुरैश को ये कब गवारा हो सकता था कि ये लोग ऐसी नामानूस सदा बुलंद करें, क्योंकि ये तो ऐसी है ना किसी माशरे में एक नई पुकार, खानदान से, बिरादरी से, माशरे के नॉर्म्स जो है उससे हटी हुई आवाज़, और तब्दीली किसी को अच्छी नहीं लगती। लिहाजा वो ये बर्दाश्त नहीं कर सके कि कोई इनके मजहब पर खुल्लम खुला तनकीद करे और इसको गलत ठहराए। आज आप देखिए, हम अपने ऊपर देखें, इंतहाई फरसूदा रस्म है, हमें खुद नहीं पता ये क्यों करते हैं लेकिन लोग करते हैं। और जरा कोई अल्लाह का बंदा के ये क्या कर रहे हो तो कहेंगे अस्तगफिरुल्लाह, पता नहीं ये कोई वहाबी आ गया है, ये कौन है। यानी अब सिर्फ मरने जीने की या शादी ब्याह की चंद रस्में जो आज भी हमारे इंडो पाक में बहुत मारूफ हैं, सिर्फ उस पर आवाज़ तो उठा कर देखी, इशारा तो करे तो लोग कहते हैं कि ये क्या बात हो गई, इसके बगैर भी हो सकता है, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। और इसी तरह से उन लोगों को बुरा लगा कि हमारी मूर्तियों पे बात करें। ये जो आज के हमारे फैशन, हमारी रस्में, हमारा लाइफस्टाइल है ना, ये समझे उस दौर की मूर्तियां थी। हर मूर्ति एक सिंबल थी किसी ना किसी रस्म का, और हर अकीदे के पीछे कोई रस्म होती है। ये बात मैं आपको 8वें 12वें से बता रही हूँ, सूरह अल नाम पढ़ाते हुए मिसाल देती हूँ। किसी के घर गए, आपकी कोई नॉन मुस्लिम फ्रेंड है कह ले, उसके आंगन में आपको एक बड़ा खूबसूरत फूलों का पौधा दिखा, आप कहती है ये बहुत ही खूबसूरत है, वो कहती है तुम्हें पसंद है, जी, वो कहती है अच्छा मैं इसमें से ना थोड़ा सा हिस्सा काट के ना एक कलम सी थोड़ा सा एक साइड पे तो मैं आपको देती हूँ, जाकर आप अपने आंगन में लगा लें। तो थोड़े दिन बाद आपके भी घर में एक पौधा जो है वो ऐसे फूल देने लगेगा। अब जो ही उसके घर से वो थोड़ा सा उस पौधे का कोई हिस्सा, कोई कलम, कोई पनीरी निकालेंगे ना अपने घर लाने के लिए, तो उस पौधे के साथ कुछ वहां की मट्टी भी आ जाती है। ऐसी है ना, मट्टी के बगैर लगेगा भी कैसे। बस जब किसी माशरे और खासर पे पेगन मुशरिक माशरे की कोई रस्म उम्मत मुस्लिमा उठाती है ना, तो उस मजहब की, उस सोच की कुछ ना कुछ कौम के दीन की कोई चीज आ जाती है। इसीलिए अब मैं आज बात करूंगी तो आप कहेंगे ये क्या है, लेकिन सच पीला जोड़ा। आज भी पाकिस्तान में दुल्हन के तीन जोड़ों में से एक जोड़ा पीला जोड़ा होता है। आप पीला जोड़ा क्यों पहनाते हैं? रस्म है, हिंदू से ही आया, वो क्यों पहनाते हैं लड़की को शादी से कुछ दिन पहले पीला जोड़ा, ताकि बाहर की देवी खुश हो जाए, और वो खुश होगी ना तो इस लड़की के ऊपर रहमत आएगी और ये अपने घर सुखी रहेगी। आप कहेंगे अस्तगफिरुल्लाह, हम इसलिए तो नहीं पहनते। मुझे पता है आप इसलिए नहीं पहनते पहनाते क्योंकि आपने कभी सोचा ही नहीं कि ये इस पीले जोड़े की हकीकत क्या है। दुल्हन आई तो तेल डाल दो, फलां कर दो, 101 मिसाल आपके पास होगी। तो याद रखिए, उनके दिलों से उन मूर्तियों की बेबसी का एहसास खुरचना, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा टास्क था कि ये हमारी मूर्तियों को बेबस साबित करके दिलों को इससे बेजार कर रहे। इस तरह की पूजा पाठ और नजरो न्याज में तो इनकी उम्रें गुजर गई, यही तो इनके माबूद थे। आज की जुबान में आप कह सकते हैं, यही तो इनके माई बाप थे जिनको वो बाप दादा से पूछते थे क्या वो इन्हें छोड़ दें, वो तो कभी ये सोच भी ना सकते थे। इसलिए उन्होंने फिर नफरत से मुंह फेर लिए, हकारत से कान बंद कर लिए। फिर इसी पर बस नहीं था, बहुत सारों ने गालियां भी दी, तानों के तीर चलाए, तमस्खुर के खंजर छोंके और जितना हो सका जिस्म रूह पर जख्म लगाए। इसी तरह एक जमाना गुजर गया, कोई तो हिजरत कर गया और कोई ईसाई हो गया। दीन इब्राहिम पर सिर्फ जईद रह के वो काबा की दीवार से लिपट कर रोते और कहते, खुदाया अगर मैं जानता कि तुझे कौन सा तरीका पसंद है तो इसी को अपनाता, मगर मुझे मालूम नहीं। फिर बेख्तियार वो सजदे में गिर पड़ते। तो आज के इस सेशन से आपके मेरे लिए अमल की बात क्या है कि मत देखिए कि लोग क्या कर रहे हैं, माशरा क्या कर रहा है, खानदान के रस्म व रिवाज क्या कर रहे हैं, इधर क्या है और उधर क्या है, ऐसा क्यों तो वैसा क्यों। क्योंकि जब आप इस तरह की बातें करते हैं ना, तो आप अल्लाह की पुकार, वो जो वही इलाही का पैगाम है ना, उससे दूर होते हैं। आज भी तो हम खानदान परस्त हैं, खुदा परस्त होने से ज्यादा, मुआशरा परस्त है, बिरादरी परस्त है, रस्म परस्त है। ये जुमला लिखिए, हर इंसान जरूर किसी का बंदा है। अगर कोई अल्लाह का बंदा नहीं है ना, तो वो नफ्स का बंदा होगा, मुआशरे का बंदा होगा, पैसे का बंदा होगा, माइटी डॉलर डॉलर की पूजा करने वाला होगा, कोई किसी रस्म का बंदा होगा। यानी जगह खाली नहीं रहती। आज साइंस भी कहती कि वैक्यूम नहीं होता, कुछ भी ना हो ना तो वहाँ हवा ज़रूर होती है, पानी भी डाल दें तो फैल के अपनी पूरी जगह को नीचे से कवर कर देता है। तो याद रखिएगा कि ये सारी चीज़ें पढ़ते हुए जब हम आज के इस पारे पे आएंगे, तो आज आपको सूरत कहफ में ऐसे ही कुछ जवान दिखेंगे, ऐसे ही कुछ हालात दिखेंगे कि जिधर मुआशरे के सारे सेटअप से हटकर अपने जोम में बस फितरत की पुकार पे लब्बाई कहते हुए वो अपने घरों से निकलते हैं, और फिर अल्लाह ताला उनका हाथ कैसे थामता है, ये तो हम सूरह कहफ में पढ़ेंगे। ये पारा सूरत बनी इसराइल और सूरत कहफ की इब्तदाई आयात पे मुहित है, और आप देखेंगे कि इसमें जितना ज़्यादा आपको ईमान का इजहार, तौहीद क्या है, ये दिखेगी, और इसी तरह से आप इसमें जवानों को देखेंगे